अगली सुबह राजवंशी बंगले का माहौल भारी था। पिछले दिन जिस धूमधाम से शादी की तैयारियां की गई थीं, उसी घर की हवाओं में अब बेचैनी और खामोशी तैर रही थी। हॉल में रिश्तेदारों की धीमी फुसफुसाहटें, बड़े झूमर के नीचे बिखरे गुलाब की मुरझाई पंखुड़ियां और हर कोने में बस यही सवाल, अखिल कहाँ था। सरोज जी सोफे पर बैठी थीं, आंखों में लालिमा और चेहरे पर अपमान का बोझ। यशवर्धन जी लगातार चुपचाप सिगार के धुएं में डूबे हुए थे। अर्जुन बार बार अपनी घड़ी देखता और किसी अनजाने डर में कदमों को हिलाता रहता। और सामने शालिनी और उसका परिवार बैठा था, उनकी आंखों में गुस्सा, हैरानी और चोट का मिलाजुला मिश्रण। तभी बंगले के बड़े दरवाजे की आवाज हुई, सबकी गर्दनें एक साथ मुड़ी। अखिल भीतर आया, उसके चेहरे पर रात भर की थकान, आंखों के नीचे गहरी काली लकीरें और भीतर से टूटा हुआ मन साफ झलक रहा था। उसने कमरे में मौजूद किसी से कुछ नहीं कहा, उसकी एंट्री नहीं सबको चुप करा दिया। शालिनी खड़ी हुई, उसका दुपट्टा कांपते हाथों से खिसकने लगा। वह सीधी अखिल के सामने आ गई, उसकी आवाज तेज थी मगर कांप रही थी। कहाँ थे तुम अखिल, शादी के दिन तुम गायब हो गए। तुम्हें पता भी है हमारी कितनी बदनामी हुई है, मेरे घर वालों को, मेरे पापा को, सबको कितना बुरा लगा, तुम वक्त पर क्यों नहीं आए। पूरा हॉल गूंज गया उसकी बातों से, रिश्तेदार आपस में फुसफुसाने लगे। अखिल ने एक पल शालिनी की ओर देखा, उसकी आंखों में शर्म भी थी पर जवाब नहीं। उसने कुछ कहना चाहा पर होंठों पर शब्द ही नहीं आए और फिर बिना कुछ कहे सीधा सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। अर्जुन उसे रोकना चाहता था लेकिन यशवर्धन ने हाथ उठाकर इशारा किया, जाने दो। कुछ ही देर बाद सरोज जी गुस्से से तमतमाते हुए अखिल के कमरे में पहुंची। दरवाजा अधखुला था, भीतर अखिल खिड़की के पास खड़ा था, हाथ जेब में डाले और चेहरा बाहर के आकाश की ओर टिका हुआ। अखिल, सरोज जी की आवाज तल्ख थी, ये सब क्या है? तुम्हारी शादी का मुहूर्त भी निकल गया और तुम कहीं गायब थे। कल रात को क्या तमाशा हुआ है तुम जानते भी हो? अखिल ने आंखें बंद कर लंबी सांस ली, वह माँ की ओर मुड़ा और धीमी आवाज में बोला, माँ मैं रैना के साथ था। सरोज जी की भौहें से कुड़ गईं। रैना, वही घटिया लड़की, उसकी वजह से तुमने अपनी शादी बिगाड़ दी, पूरे समाज में हमें शर्मिंदा कर दिया। अखिल की आंखों में पहली बार तीखी चमक लौटी, उसने दृढ़ स्वर में कहा, प्लीज माँ रैना के बारे में कुछ मत कहिए, वह जैसी भी है अच्छी है। उसके पिताजी अचानक चल बसे थे, वह अकेली थी, मैं उसके साथ खड़ा था बस। सरोज जी और भड़क उठी, अखिल तुम्हें अंदाजा है कल कितनी बड़ी बात हुई? लड़की के बाप की मौत हुई तो क्या, पूरे खानदान की इज्जत दांव पर लगा दी तुमने, अपनी ही शादी छोड़ दी तुमने। अखिल ने अपनी मुट्ठी भींच ली, उसकी आवाज भारी और कांपती हुई थी, माँ इंसानियत सबसे ऊपर है, रहना टूटी हुई थी, अगर मैं उसे अकेला छोड़ देता तो शायद वो जिंदा ही न रहती। शादी का मुहूर्त बाद में भी निकल सकता है लेकिन उस पल अगर मैं उसके पास ना होता तो वो हमेशा के लिए खो जाती। कमरे में सन्नाटा छा गया, सरोज जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था लेकिन अखिल के स्वर में ऐसी गंभीरता थी कि वह पल भर के लिए चुप रह गईं। फिर भी उनकी आंखों में कठोरता बनी रही। तो अब हमें समझ में आ गया, तुम्हें अपनी शादी से ज्यादा उस लड़की की परवाह है। लेकिन सुन लो अखिल, ये घर, ये नाम, ये वंश सब तुम्हारे सिर पर है, एक पराई लड़की के लिए इसे दांव पर मत लगाना, वरना ना तुम्हारा ठिकाना रहेगा ना उस रैना का। अखिल ने धीरे धीरे सर झुका लिया लेकिन उसकी आंखें अब भी माँ की ओर जमी रहीं और उसके चेहरे पर साफ था, वह हार नहीं मानने वाला। कमरे में गहरी चुप्पी पसर गई। बाहर हॉल में अब भी शालिनी और उसका परिवार इंतजार कर रहा था और पूरे राजवंशी बंगले की हवाओं में तनाव की गंध तैर रही थी।